الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير صلوات على محمد برادران عزیز و خواہران محترم، تاریخ خطبی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ سیرت کی کتابیں ہیں، ان کو ہم پڑھتے چلے جائیں، قصص الانبیاء کو دیکھتے چلے جائیں، اس کا جتنا حصہ قرآن مجید میں رپورٹ ہوا ہے اس کو ہم دیکھتے چلے جائیں، اور اس حوالے سے اگر ہم تجزیہ اور تحلیل کریں تو ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کا مقصد ملک کا حصول کبھی بھی نہیں تھا، وہاں پر اقتدار کبھی بھی ٹارگیٹ نہیں تھا، وہاں پر تخت پر قبضہ کرنا یہ کبھی بھی ہدف نہیں تھا، اسے آبجیکٹیو کے طور پر کبھی بھی نہیں لیا گیا۔ وہ ایک ٹول تو بن سکتا ہے، وہ ایک راستہ تو بن سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے الٹیمیٹ آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے اسپیڈ کو بوسٹ اپ کیا جائے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ٹارگیٹ قرار دیا جائے، اس کو ہدف قرار دیا جائے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو دنیا پرست افراد ہیں جن کے میٹیریلسٹک اپروچ ہے، ان کا کل ہدف اور ان کا کل ٹارگیٹ یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اقتدار کے اوپر قابض ہو جائیں۔ موجودہ دنیا کے اندر بھی جہاں پولیٹیکل سائنس میں مختلف نظریات کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اقتدار کو ہدف نہیں ہونا چاہیے، مگر ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا دار افراد وہ اس کی بہت زیادہ پاسداری کر نہیں پاتے، اور ایک مرتبہ اگر اقتدار حاصل ہو جائے تو اس کو اپنا ہدف سمجھ کر فرض جان بنا کر رکھتے ہیں، اس سے پھر اپنے آپ کو الگ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ ان کا آبجیکٹیو تھا۔ اگر آپ اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اقتدار ایک ٹول کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جن کا حق ہے اگر ان کو مل جائے تو وہ اس کے ذریعے سے اپنے الٹیمیٹ آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اسپیڈ کو اور اپنی رفتار کو اس کے ذریعے سے بڑھا سکتے ہیں، مگر یہ ڈائریکٹ ہدف آبجیکٹیو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر ہم آخری زمانے کی بھی جب بات کرتے ہیں تو اس میں کیا بیان کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب زمانے کے امام تشریف لائیں گے تو ان کا ہدف کیا ہوگا، یملؤ الارض قسطاً وعدلا، وہ جب اقتدار میں آ جائیں گے تو اس پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جائیں گے کہ اقتدار مل گیا یہی ہمارا ہدف تھا، جواب جی نہیں، یہ کبھی بھی ہدف نہیں تھا۔ وہ آنے والا آئے گا تو یملؤ الارض قسطاً وعدلا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا، کما ملئت ظلم و جورا، کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹارگیٹ عدل و انصاف کا نفاذ ہے، ظلم و جور کا خاتمہ ہے، ٹارگیٹ صرف اور صرف اقتدار پر قبضہ کرنا نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، آپ اگر امیر المومنین کے اس جملے پر بھی توجہ کریں جو عبداللہ ابن عباس کے ساتھ امیر المومنین کا مکالمہ ہے، تو واقعاً اس میں فضیلت کا جو نقطہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر اس کے ذریعے سے مولا کائنات نے کسی حقیقت کو سمجھایا۔ جب مولا کائنات عین جنگ کے عالم میں جھوٹی کاٹ رہے تھے، اس کو مینٹ کر رہے تھے، اور عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا کہ اس موقع پر یہ کام انجام دینے کا کوئی خاص سبب، کوئی خاص مقصد، تو امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہوگی، اس کی کیا قیمت ہوگی، الفاظ میرے ہیں مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہوگی، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، یعنی اتنا اسے ریپیئر کیا جا چکا ہے، اتنی مرتبہ اسے کاٹا جا چکا ہے کہ اب اس کے بعد اس کی کوئی قیمت مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اگر آپ لے کر جائیں تو شاید کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو امیر المومنین اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جتنی قیمت اس جھوٹی کی ہے میری نظر میں اتنی قیمت بھی اس اقتدار کی نہیں ہے، اس جھوٹی کی قیمت میرے نزدیک اس اقتدار سے زیادہ ہے، اس اقتدار کی قیمت اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنی اس جھوٹی کی قیمت ہے۔ اور یہاں پر پھر واپس ہمیں اس تبصرے کو یاد رکھنا چاہیے جو ہمارے علماء نے واقعی نقطہ رسی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت علامہ طالب جوہری صاحب جن کا بھی ذکر ہو رہا تھا، اللہ ان کو واقعی دعا کرنی چاہیے کہ صحت کامل اور عاجلہ نصیب ہو، ان کا بہت پیارا تبصرہ ہے، اور ان کے علاوہ بھی میں نے بعض بزرگان سے یہ تبصرہ سنا، वो फरमाने लगे कि वाकई अमीरुल मोमिनीन का ये बयान कितना हकीकत पर मबनी है कि मौलाए कायनात ये कहें कि इस जूती की जो कीमत है ना, तख्त और इख्तदार की कीमत उतनी भी नहीं है कि जितनी इस जूती की कीमत है। ये जूती ज़्यादा कीमती है। उसकी वजह क्या है? का बात बिल्कुल वाज़े है कि ये इख्तदार का तख्त वो है कि जिस पर कभी हक आया कभी बातिल आया, अली की जूती वो है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ हक का पैर आया। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाला। वहां पर भी अमीरुल मोमिनीन ने इस बात को वाज़े किया कि इस तख्त और इख्तदार की ज़ातन कोई कीमत नहीं, हाँ मगर ये कि इस तख्त और इख्तदार के ज़रिए से माशरे के अंदर अदल और इंसाफ को कायम किया जाए, जुल्म का खात्मा किया जाए, तब इसकी कोई वर्थ है, तब इसकी कोई वैल्यू है। कीमत होती ही रिलेटिव है। कीमत को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, हम कैसे इस बात का फैसला करते हैं कि इसकी क्या कीमत है और इसकी क्या कीमत होनी चाहिए? इसका ताल्लुक तो मार्केट की फोर्सेस के साथ है। डिमांड एंड सप्लाई कितना बड़ा रोल प्ले करती है किसी चीज़ की कीमत को तय करने के लिए। हमने कभी भी किसी चीज़ की कीमत का तायुन इस बुनियाद पर नहीं किया कि वो कितनी कारामद है। और कीजिएगा कभी भी ज़माने के अंदर, माशरे के अंदर, ये तो इकोनॉमिक्स के हवाले से बहुत वाज़े बातें हैं कि जिनको डिस्कस किया जाता है कि जब हम ये कहते हैं कि ये इतनी कीमती चीज़ है तो हमारा मायार क्या होता है कीमती करार देने का? हमारा मायार ये होता है कि वो चीज़ कितनी कारआमद है या वो चीज़ कितनी नायाब है। सिर्फ कारआमद होने की बुनियाद पर हम कीमत को डिटरमिन नहीं करते। ज़ाहिर आप लोग माशाल्लाह साहिबान फ़हम व फ़रासत, साहिबान मुतालिया, आप लोग तो इकोनॉमिक्स के माहिरीन होंगे जो यहाँ पर बैठे होंगे, लेकिन मुझे बताइए वाकई थोड़ा बहुत जो कुछ मैंने भी देखा है और जो कुछ हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, तो क्या बात है, क्या कीमती होने का मायार ये कि वो चीज़ कितनी यूज़फुल है? सिर्फ और सिर्फ ये मायार होता बरादरान अज़ीज़ तो फिर ऑक्सीजन की कीमत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी कीमत है यानी हवा इतनी वाफिर मकदार में मौजूद है और उसी की तरह ऑक्सीजन भी। हम सब सांस के बगैर तो रह ही नहीं सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि कुछ देर के लिए भी हमारा ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाए, स्टॉप हो जाए। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस ले सकेंगे? नहीं ले सकेंगे। ऑक्सीजन की कितनी कीमत है जो परवरदिगार आलम ने रखी है। खुदा ने मुताल कहे कि हर थोड़ी देर के बाद $1 की पेमेंट करोगे तो 1 घंटे की सांस तुम्हें मिलेगी, ऑक्सीजन तुम्हें उस सूरत में मिलेगी। परवरदिगार आलम ने ऐसा कोई सिलसिला नहीं रखा। क्या हमारे पास वाकई हमें एहसास भी होता है कि ये कितनी कीमती चीज़ है जो हमारी सराउंडिंग के अंदर मौजूद है? बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री परवरदिगार आलम ने ये सारा सिलसिला बिल्कुल मुफ्त रख दिया। ज़रा गौर फरमाइए, जो चीज़ इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है कि अगर वो ना हो तो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे परवरदिगार ने इतना अर्ज़ा बना दिया कि अगर हम उससे फरार अख्तियार करें तो वो हमसे दूर नहीं होगी, वो हमारे साथ साथ ही। अब यहाँ पर वाकई एक चीज़ और भी है जो गौरतलब है। एक तो परवरदिगार आलम की कुदरत, परवरदिगार आलम का लुत्फ, परवरदिगार आलम का कर्म। कई मरतबा ऐसा होता है कि जो चीज़ आसानी के साथ मिल रही होती है तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा है, गुर्दे कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये तो उसको समझ में आता है जब गुर्दे फेल हो जाए और डायलिसिस के लिए जाना पड़े। खुदा ना करे कि किसी को इस मरहले से गुजरना पड़े, ट्रांसप्लांटेशन के मरहले से गुजरना पड़े। वो डायलिसिस की मशीन कितने की आती है, वो प्रोसेस कितना कीमती है, ये अलग बात है कि कोई इसको सब्सिडाइज करते और फ्री में वो SIUT के अंदर होने लगे, वो एक अलग चीज़ है। वरना उसकी कीमत पेपर पर कितनी है, वो मशीन कितनी कीमती है, वो प्रोसेस कितना कीमती है, उसमें इंसान का कितना सरमाया खर्च हो सकता है, वाकई एहसास होता है। मगर फिर उसके बाद ये गौर करना चाहिए कि ये जो गुर्दे परवरदिगार आलम ने इन बिल्ट लगाए खुदावंद मुताल ने, तो उसका कभी कोई बिल नहीं मांगा। ये वो मंजिल है कि जहाँ पर दिल से इंसान को कहना चाहिए कि शुक्रानिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालने वाला है। बेशक ऐसा ही है। अब गौर फरमाइए बरादरान अज़ीज़, ट्रांसप्लांटेशन अगर हो भी जाए और किसी और का गुर्दा अगर लग भी जाए तो भी खतरा लगा रहता है, धड़का लगा रहता है कि आज कोलैप्स कर जाएगा, कल कोलैप्स कर जाएगा, जब डॉक्टर से सवाल करते हैं कि फिर ये इतना ख़तरा क्यों, अब तो ट्रांसप्लांटेशन हो गया, तो वो भी यही बात कहते हैं कि भाई फैक्ट्री फिटेड वाला मामला तो नहीं हो सकता। जो फैक्ट्री फिटेड होता है वो मामला तो अलग ही होता है। तो जब गाड़ी के अंदर हमें समझ में आता है कि फैक्ट्री फिटेड अलग चीज़ होती है, तो परवरदिगार की तरफ से जो चीज़ मैन्युफैक्चर हुई है बहरहाल उसकी बात अलग ही होती है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाला। अर्ज करने का मकसद ये था कि कौन सी चीज़ कितनी कीमती है, उसका मैार हमारे पास ये नहीं है कि वो कितनी कार आमद है, वरना हवा ऑक्सीजन उसके बगैर तो हम रह नहीं सकते। मगर देख लीजिए कि परवरदिगार आलम ने इतना वाफिर उसको फराहम कर दिया है, इतनी सप्लाई ज़्यादा है कि हाई डिमांड में होने के बावजूद जब सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उसकी प्राइस फिर कुछ भी नहीं है, उसकी कीमत फिर कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो और तलब बात है वो ये कि इसी फिज़ा के अंदर ऑक्सीजन भी है और ऑक्सीजन के साथ दूसरी हवाएं, दूसरी गैसेज भी मौजूद हैं, पहलू ब पहलू दूसरी गैसेज भी मौजूद हैं, सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं है। मगर ये क्या अजीब निज़ाम है परवरदिगार कि हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन ही पहुँचती है, दूसरी गैसेज को पहुँचने का मौका नहीं मिलता। यानी कहीं तो फिल्टर है, कुछ तो है। अब जो डॉक्टर हैं वो ज़ाहिर है इस बात को ज़्यादा बेहतर तौर पर एलोबरेट कर सकते हैं कि लंग्स तक जो हवा पहुंच रही है वो तमाम गैसेस पर मुश्तमिल है। कहते नहीं, वो सिर्फ ऑक्सीजन पहुंचती है, ऑक्सीजन के अलावा दीगर जितनी गैसेस पहलू पर पहलू मौजूद हैं उन सब को रोक दिया जाता है। तो हैं तो वो ऑक्सीजन के पहलू में, उनको भी आने दिया जाए। कहते नहीं, निज़ाम उनको कह देगा गेट आउट, बाहर निकलो, तुम्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अगर वो दूसरी गैसें शिकवा करें कि हम भी तो ऑक्सीजन के पहलू में हैं, तो जवाब यही मिलेगा पहलू में होना मुफीद होने की दलील नहीं है। फेफड़ों की कुर्बानी तो नहीं दे सकते, तो तुम बाहर निकलो, तुम्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं है, तुम्हारे आने की वजह से माहौल ख़राब हो जाएगा। तो सिर्फ माहौल ख़राब होने को बचाने के लिए जब उन्हें उठा दिया जाता है तो जन्नत का माहौल ख़राब करने का भी परवरदिगार का कोई मूड नहीं है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ये अगर बुनियादी जो जन बातें हैं अगर वो वाजे हुई, तो अब आइए उसके बाद ज़रा देखिए। बहलोल दाना ने हारून रशीद को टॉन्ट किया, किस मौके पर? मुल्क इक्तदार। अब आप जानते हैं कि बहलोल के पास एक एज है, आले मोहम्मद का दीवाना है, इसीलिए सबसे बड़ा दाना है। ये दीवानगी वो है जो इंसान को शऊर अता करती है। तो अब जनाब बहलोल के पास ये ऐज है कि इस दीवानगी के पर्दे में बहुत सी ऐसी बातें कि जो बड़े बड़े साहिबान अक्ल नहीं कर पाते जनाब बहलोल बयान कर देते हैं। तो हारून रशीद के साथ गुफ्तगू हो रही है। बहलोल ने कई मर्तबा हारून को, आप जानते हैं कि किस तरीके से टोका है, टॉन्ट किया है, समझाने की कोशिश की है, हुआ है। तो अब हुआ ये कि हारून रशीद ने किसी मौके पर एक मुफाखरा किया, एक तकब्बुर का अंदाज़ है, इफ्तिखार है, इजहार किया उसका। बहलोल को जो अंदाज़ा है कि ये जो मेरी मुमलिकत, ये जो मेरा इख्तदार, ये जो मेरा मुल्क है, इसकी कितनी कीमत है, कुछ हमें अंदाज़ा है, इसकी वर्थ क्या है तुम्हें अंदाज़ा है। वो ज़ाहिर है कि एक इम्प्रेशन देना चाह रहा था कि तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं कितना बड़ा बादशाह बन चुका हूँ। तो जनाब बहलोल ने मुस्कुरा कर कहा कि हारून ये बताओ, मुझे तो नहीं अंदाज़ा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक सिचुएशन रखता हूँ, उस सिचुएशन को असेस करो और फिर तुम बताओ कि तुम्हारे मुल्क और इक्तदार की कीमत क्या है। क्या पूछो, होता यही है ना कि सिचुएशन टू सिचुएशन फर्क पड़ता है मामला का। एक बात बताओ कि तुम एक सहरा में जा रहे हो, रेगिस्तान में, और तुम्हारे पास पानी ख़त्म हो गया और तुम मरने के करीब हो, जहाँ बलब तुम्हारे पास पानी नहीं, मर जाओगे। ऐसे में एक शख्स आता है और ये कहता है कि मेरे पास पानी मौजूद है, मगर मैं फ्री में नहीं दूंगा, मैं मुफ्त में नहीं दूंगा। एक कूजा आप देने के लिए तो मैं तैयार हूं, मगर मैं उसकी प्राइस तुमसे डिमांड करता हूं। ऐ हारून बताओ कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो तुम उस आप उस कूजाए आप की क्या कीमत देने के लिए तैयार हो जाओ। सिचुएशन आपके लिए बात है, एक डेजर्ट है, एक सहरा है, एक रेगिस्तान है, तुम उसमें जा रहे हो, तुम्हारी जान खतरे में है, मरने के करीब हो, पानी तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे में एक शख्स आकर ये कहता है कि मेरे पास एक गिलास पानी मौजूद है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, फ्री में नहीं दूंगा, मुझे इसकी प्राइस चाहिए, मुझे इसकी कीमत चाहिए, बताओ तुम उसकी क्या कीमत दोगे। हारून ने कुछ देर के लिए सर झुकाया और उसके बाद फिर कहा, ऐ बहलोल, अगर वाकई हालत ऐसी हो जाए तो मैं अपनी आधी हुकूमत उस शख्स को देने के लिए तैयार हो जाऊंगा अगर वो एक गिलास पानी मुझे दे। बहलोल ने सुन लिया। क्या अब उसके बाद सिचुएशन चेंज होती है और थोड़ी मॉडिफाई होती है। अब सिचुएशन ये होती है कि तुमने पानी तो पी लिया, आधी मुमलिकत तुम दे चुके हो, पानी तुमने पी लिया और वो पानी तुम्हारे वजूद के अंदर अटक गया। बहुत खुल के अर्ज करूं कि अब तुम्हें पेशाब नहीं आ रहा और तुम दवा के मोहताज हो और दवा भी नहीं मिल रही, और ऐसे में एक हकीम, एक मौलिज, एक डॉक्टर नज़र आता है और वो कहता है मेरे पास दवा है कि जिसके ज़रिए से तुम्हारा पेशाब जो रुका हुआ है वो तुम्हें आने लगेगा, लेकिन मैं उसकी कीमत चाहता हूँ, बताओ तुम उसकी कीमत क्या दोगे। तो हारून रशीद ने यह कहा कि ऐ बहलोल, उस दवा को हासिल करने के लिए मैं अपनी बाकी आधी हुकूमत उस हकीम को दे दूँगा। तो बहलोल ने कहा कि अब कुछ अंदाजा हुआ कि आपकी हुकूमत की कीमत क्या है, आपकी इस हुकूमत, आपके इस मुल्क, आपके इस इख्तदार की कीमत क्या है, कुछ अंदाजा हुआ। बहलोल कहते हैं कि समझ लीजिए कि आपके कुल इख्तदार की कीमत चंद कतरे पानी और चंद कतरे पेशाब से ज्यादा नहीं है। आपने गौर फरमाया ब्रदर ने अजीज, कि इससे ज्यादा उसकी वर्थ ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई टारगेट तो है ही नहीं, कोई मकसद तो है ही नहीं, मकसद तो ये है कि किसी तरीके से इख्तदार को हासिल किया जाए और उसको एंजॉय किया जाए, फिर उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, कहीं पर कोई इंसेंटिव दे दिया, कहीं पर कोई इंसेंटिव दे दिया, मगर ये सारे खिलौने हैं, ये तमाम के तमाम चीज़ें तमाशे हैं। असल हक जिसका था अगर उसको मिल जाए तो फिर वो इसको टारगेट के तौर पर यूज़ नहीं करेगा, इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल करेगा, और जब टूल के तौर पर इस्तेमाल करेगा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो उसके हुसूल के लिए, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, बूस्टअप करने के लिए इसको यूज़ करेगा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ बरातरान अज़ीज़, आप कुरान मजीद पढ़ते चले जाइए, आपको अंदाज़ा होगा परवरदिगार आलम ने आले इब्राहिम के लिए मुल्क और इख्तदार की बात की। सूरह निसा के अंदर परवरदिगार आलम फरमाता है, हम यहासुदून नास अलमा आता हूँ मुल्ला मिन फ़ज़ल, कि क्या ये लोग इस बात पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने लोगों को दिया, उस पर ये लोगों से हसद करते हैं। तो सुन ले, फकत आतैना आला इब्राहीम अल किताबा वल हिक्मा, अगर ये इन्हीं बातों पर हसद करते हैं तो हम ऐलान करते हैं कि हमने आले इब्राहीम को किताब भी दी, हिकमत भी दी, मुल्कन अजीमा, और हमने मुल्क अजीम अता कर दिया। अब तुम्हें अच्छा लगता है तो भी हमने उनको मुल्क दिया है, तुमको बुरा लगता है तो भी हमने उनको मुल्क दिया है। आप जरा गौर फरमाइए, आले इब्राहीम सूरह निसा के अंदर परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा, हमने तो दे दिया, क्या वो एग्जीक्यूट भी होगा, बास केसेस में होगा, नहीं होता तो ना हो, मगर परवरदिगार आलम की तरफ से ऐलान हो गया कि हमने किसको दिया। खुदा ने जो दिया है वो लोगों के मानने का मोहताज नहीं है, याद रखिएगा बरादरान अजीज। इत्तेफाक ऐसा है कि माह मुबारक रमजान में जो शहादत की मजलिसें थी उसके लिए सरनामा कलाम में मैंने जिस आयत को यहीं इमाम बारगाह के अंदर बल्कि मस्जिद में तिलावत करने का शरफ हासिल किया था, यह सूरह बकरा की आयत थी कि जिसमें परवरदिगार आलम ने जनाब तालूत के लिए ये इरशाद फरमाया था कि इन्नल्लाहा कद बअसा लकुम तालूता मलिका, कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए मलिक, साहिब मुल्क करार दिया। ऐ बनी इसराइल वालों, तुम मानो या ना मानो, परवरदिगार ने उसे साहिब मुल्क बना दिया। जिसको खुदा बनाता है उसका ऐलान इस तरीके से होता है कि अल्लाह ने बना दिया। वो एतराज कर रहे हैं, अन्ना यकुनु लहुल मुल्क अलैना, कैसे हो सकता है कि उसे मुल्क मिल जाए, वरना नो अहक्कु बिल मुल्क के मिनहू, जबकि हम इस बात के ज्यादा हकदार हैं, तुम ज्यादा हकदार हो तुम्हारे ओपिनियन में, खुदा ने उसको बनाया है जो खुदा की नजर में हकदार है। परवरदिगार तुमसे पूछने का मोहताज नहीं है, परवरदिगार आलम इस बात का मोहताज नहीं है कि तुमसे पहले मशवरा करे कि तुम्हारा क्या ख्याल है, किसको बनाया जाए।
फिर वहीं पर परवरदिगार आलम ने कहा वल्लाहु युती मुल्कहू मैं यशा, अल्लाह जिसको चाहता है अपना मुल्क अता करता है। अल्फाज पर जरा गौर कीजिए, वल्लाहु युती मुल्कहू मैं यशा, अल्लाह जिसको चाहता है मुल्क अता करता है। सरनामा कलाम की आयत क्या थी, तुतिल मुल्का मन तशा, तू जिसको चाहे मुल्क अता करे। तालूत को मुल्क दे दिया, क्या लोगों ने कबूल कर लिया? इन्होंने तो बड़ी मुश्किल से बाद में कबूल किया, मगर जिससे लड़ने जा रहे थे वो तो जालूत था, इख्तदार तो उसके पास है, तख्त पर तो वो बैठा हुआ है। अगर सिर्फ तख्त पर कब्जा होना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने इसको मुल्क अता किया है, तो फिर कहो कि तालूत को भी खुदा ने मुल्क दिया, जालूत को भी खुदा ने मुल्क दिया, और दोनों वो के जिसको खुदा ने मुल्क दिया है आपस में लड़ रहे हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है कि ये भी रज़ी अल्लाह और वो भी रज़ी अल्लाह। बरादरान अज़ीज़, ये बहुत बड़ा तमाशा है कि एक तरफ ये कहा जाए कि ये जो हक पर है वो भी रज़ी अल्लाह, कहा कि है वो बातिल पर मगर वो भी रज़ी अल्लाह, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कहा लड़ने के बावजूद रज़ी अल्लाह, लड़ने के बावजूद रज़ी अल्लाह। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं कभी नहीं भूल पाता कि स्कूल के ज़माने में हमने अपने उस्ताद से सवाल किया, जो हमें इस्लामियात पढ़ाया करते थे, उनसे मैंने सवाल किया था, गुलाम अली साहब पंजवानी, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, मैंने उनसे सवाल किया था कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक तरफ बनू उमैया, दूसरी तरफ बनू अब्बास, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और ये भी रज़ी अल्लाह और वो भी रज़ी अल्लाह। यानी आज जब रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है तो कहा जाता है बनू उमैया का दौर भी बहुत अच्छा था, बनू अब्बास का दौर भी बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि आप इतना दूर क्यों चले गए, सिफिन में आइए, एक तरफ अली है दूसरी तरफ अमीर शाम है, ये भी रज़ी अल्लाह और वो भी रज़ी अल्लाह। तो ये होता क्या है कि जब आप उसूल और प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें तो फिर उसके बाद ये सारा पैच वर्क करना पड़ता है। आप शुरू करें इसको और देखें, परवरदिगार आलम ने जब जनाब खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर अकरम के ज़माने में जब ऐलान रिसालत हुआ है, तो वो यहूद जो पैगंबर अकरम की आमद का इंतज़ार कर रहे थे, कुरान मजीद की ताबीर क्या है, लम्मा जा अहम मा अरफू कफरू बे, जब वो आया कि जिसको ये खूब पहचानते थे, तो पहचानने के बाद उन्होंने इनकार कर दिया, काम पहचान रहे हैं कि ये है वही रसूल, मगर हम इसको मानेंगे नहीं, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। तो पहचानने के बाद कबूल नहीं करेंगे, वजह क्या है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि ये आखिरी रसूल आएगा बनी इसराइल में से, ये तो बनी इस्माइल में से आ गया, अगर ये बनी इसराइल में से आता तो हम कबूल कर लेते, मगर चूंकि ये बनी इस्माइल में से आया है लिहाजा हम कबूल नहीं करेंगे। ये तासुब नहीं, ये हसद नहीं, ये क्या चीज़ है? आप ज़रा गौर फरमाइए, परवरदिगार आलम ने इसको कैसे एड्रेस किया है। सूरह मुबारक जुमा यहूद के एतराज़ात का जवाब है, वहीं परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम, आगाज़ यहीं से, बेऐब है वो ज़ात, उसकी तस्बीह कर रहे हैं, उसके बेऐब होने को बयान कर रहे हैं, जो कुछ आसमानों में है वो भी, जो कुछ ज़मीन में है वो भी, वो खुदा वो है, अल मलिक, उसको तो पहचानो, मलिक वो है, मुल्क उसका है, अल-कुद्दूस बेऐब वो है, अल-अज़ीज़ ज़बरदस्त वो है, हकीम हिकमत वाला वो है, हुवल्लज़ी वही खुदा है कि बाअसा फिल उम्मीयीन, कि जिसने उम्मीयीन में एक रसूल को भेजा, रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, जो उनके दरमियान आयतों की तिलावत करता है, वह युज़क्कीहिम उनके नफ्सों को पाक करता है, वह युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, और उन्हें किताब की तालीम देता है, उन्हें हिकमत की तालीम देता है, वह इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे इससे पहले ये लोग खुली हुई गुमराही में मुब्तला थे। और उनके एतराज़ को एड्रेस करते हुए परवरदिगार फरमाता है ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युक्ती है मन यशा, ये जो तुम्हारा एतराज़ है कि खुदा ने इस नबी को बनी इस्माइल में क्यों नाजिल कर दिया, उसमें क्यों भेज दिया, बनी इसराइल में क्यों नहीं भेजा, ये अल्लाह का फजल है, जाले का फजलुल्लाह है युती है मैं यशा, ये तुम्हारा कोई ठेका नहीं है कि परवरदिगार पहले तुमसे पूछे कि किस में से भेजा जाए, बनी इसराइल में से या बनी इस्माइल में से, फिर तुम अप्रूव करो, उसके बाद परवरदिगार आलम कहे कि हाँ, जबकि तुमने अप्रूव कर दिया तो अब हम इस नस्ल में से भेजेंगे, हम तुमसे पूछ कर नहीं भेजेंगे। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती है मैयशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है जिसको चाहे अता करे। जिसको हमने नबी बनाया है उसकी ज़िम्मेदारी है कि नबूवत के तकाज़ों को पूरा करे, जिसको हमने उम्मत बनाया है उसकी ज़िम्मेदारी है कि उम्मती होने के तकाज़े को पूरा करे। वो खुदा को अगर डिक्टेशन देना शुरू हो गया कि इसको बनाना चाहिए था या उसको बनाना चाहिए था, यानी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आप ज़रा गौर फरमाइए कि जब आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का ऐलान किया, फरिश्तों ने सवाल किया, परवरदिगार आलम ने वहाँ पर भी रिजेक्ट किया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। यानी आप ज़रा गौर फरमाइए कि आदम की खिलाफत के मौके पर फरिश्तों के इजमा को तोड़ दिया, पैगंबर अकरम की रिसालत के ऐलान पर यहूदियों के इजमा को तोड़ दिया, और मौला की विलायत के मौके पर यह नाम निहाल इजमा उसको भी तोड़ कर रख दिया। ये परवरदिगार का फैसला है, तुम होते कौन एतराज करने वाले? तुम्हारा काम है सर तस्लीम खम करना, तुम्हारा काम है सरेंडर करना। जब हम रसूल के लिए ऐलान कर रहे हैं कि लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, ए रसूल अगर आपने ये पैगाम न पहुंचाया तो आपकी रिसालत बाकी नहीं बचेगी, तो फिर उसके बाद उम्मत किस ख्याल और गुमान में? नामुमकिन के पैगंबर अकरम हुक्म परवरदिगार को पूरा ना करे, नामुमकिन। मगर जिसको कहा जाता है कि इफ सिनेरियो के तौर पर पेश किया गया कि अगर ऐसा हो जाए तो रिसालत बाकी नहीं बचेगी, फिर उसके बाद कहाँ इम्कान है इस बात का? आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज, ये एक पूरी लाइन है कि जो हमें नज़र आ रही है परवरदिगार आलम की तरफ से, कि खुदावंद मुताल का फैसला है आदम अलैहिस्सलाम को बनाया जाए, खुदावंद मुताल का फैसला है खत्मी मर्तबत को बनाया जाए, खुदावंद मुताल का फैसला है आले इब्राहिम को मंतखब किया जाए, खुदावंद मुताल का फैसला है तालूत को बनाया जाए, खुदावंद मुताल का फैसला है दाऊद को बनाया जाए, खुदावंद मुताल का फैसला है अमीरुल मोमिनीन को बनाया जाए। और आप सामने से एतराज़ात देखिए, यहाँ पर परवरदिगार ने यहूदियों के इजमा को तोड़ा, उनके एतराज़ को बिल्कुल डिस्क्रेडिट किया, और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाइए तो आपको नजर आएगा अबू सुफियान का पहले दिन से मौकिफ ये था, ओपिनियन ये था कि ये सब कुछ इक्तदार के लिए हो रहा है, ये सब का सब तख्त के लिए हो रहा है, ये सब का सब ताज के लिए हो रहा है। आपको ये रेफरेंस बार बार नजर आएगा। यानी ये जो यजीद ने कहा, जैसे मैं पिछली दो तकरीरों के अंदर मुसलसल दोहरा हूं कि लाएबत हाशिम बिल मुल्क, ये लेगेसी है, ये एक विरासत है, ये हेरिटेज है, ये ओपिनियन, ये नैरेटिव, ये बयानिया चला आ रहा था पीछे से कि ये सब इक्तदार और मुल्क के लिए हो रहा है। आपको नजर आएगा कि जिस मौके पर पैगंबर अकरम ने दावा रिसालत किया है उसे हमेशा हमल किया गया कि ये इक्तदार के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। लिहाजा आपको नजर आएगा कि जिस मौके पर फतेह मक्का हुआ है, फतेह मक्का के मौके पर भी जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने अबू सुफियान को दिखलाया कि ज़रा पैगंबर अकरम की ये जो फोर्स है इसको देखो, ताकि उसके दिल में रोब बैठ जाए और वो किसी किस्म की रेजिस्टेंस का मुजाहरा ना करे। मक्का फतह होने वाला, उस मौके पर भी अगर आप देखें तो अबू सुफियान का जुमला क्या है कि हाँ अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे भतीजे की मुमलिकत और मुल्क बहुत बड़ा हो गया। वहाँ पर भी जो लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया वो मुल्क का, वो मुल्क और मुमलिकत वो बहुत बड़ी हो गई, और जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने उसको टोका है कि ये मुल्क नहीं है, ये नबूवत और रिसालत है। जरा गौर फरमाइए, वो कह रहा है ये मुल्क, जनाब अब्बास कह रहे हैं ये मुल्क नहीं है, ये नबूवत और रिसालत है। गौर फरमाया आपने, तीसरी खिलाफत के ज़माने में यही अबू सुफियान जनाब हमजा की कब्र पर आता है और पैर से ठोकर मारता है और कहता है हमजा ज़रा देख लो, जिस मुल्क और इक्तदार के लिए तुम और हम लड़ा करते थे वो कभी भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब हमजा जो नुसरत कर रहे थे वो रिसालत की नुसरत थी, वो नबूवत की नुसरत थी। ज़रा देखो, जिस मुल्क और इक्तदार के लिए हम और तुम लड़ा करते थे आज उस पर हमारे बच्चे काबिज हो चुके हैं, उसको उन्होंने मुमलिकत और मुलुकियत से ही ताबीर किया है, और फिर उसके बाद हमें मुसलसल यही रेफरेंस नजर आता है। अमीरुल मोमिनीन को एक ऑफ़र की गई, ज़रा गौर कीजिए, अमीरुल मोमिनीन को ऑफ़र की गई दूसरी खिलाफत के बाद जब शूरा कायम की गई तो उस शूरा ने क्या ऑफ़र की थी? ये अमीरुल मोमिनीन से एंडोर्समेंट लेने की कोशिश थी, कि किसी तरीके से जो पहले हो चुका है उसको एक लेजिटिमेसी फराहम कर दी जाए। बहुत गौर कीजिएगा, जाहिर है कि मेरे नौजवान दोस्त जो हैं वो मेरे असल मुखातब हैं। क्या अमीरुल मोमिनीन के सामने वो शूरा वाले आते हैं और क्या कहते हैं, या अली पहली खिलाफत ख़त्म हो चुकी, दूसरी खिलाफत ख़त्म हो चुकी, अभी तीसरी खिलाफत शुरू नहीं हुई है, उसी का फ़ैसला होगा। और उसके लिए वो एक ऑफ़र देते हैं, वो ऑफ़र क्या है कि या अली इख्तदार आपका, हुकूमत आपकी, तख्त आपका, मुल्क आपका, खिलाफत आपकी, आप सिर्फ इन तीन बातों की यकीन दहानी करवा दीजिए। क्या कौन सी तीन बातें हैं? क्या नंबर एक, आप जो खिलाफत अभी तो शुरू होनी है ना, आप जो अपनी खिलाफत करेंगे, हुकूमत चलाएंगे कुरान के मुताबिक, नंबर एक, नंबर दो सुन्नत रसूल के मुताबिक, नंबर तीन बुज़ुर्गों की सीरत के मुताबिक। जो दो बुज़ुर्ग गुजर चुके हैं उनकी सीरत के मुताबिक। आप इंसाफ से मुझे बताइए, अगर किसी शख्स का टारगेट मुल्क और इक्तदार हो, उसको ये जुमला बोलने में कितनी देर लगेगी? अगर सिर्फ मुल्क और इक्तदार टारगेट है और उसके आगे कोई हदफ नहीं है, उसको ये जुमला बोलने में कितनी देर लगेगी? अगर कोई दुनियादार पॉलिटिशियन है उसको तो फौरन कहना चाहिए, बोलना ही है ना, बोलना ही है ना, बोलकर भी इक्तदार तो लो, बात की बाद में देखेंगे। मगर आप मुझे बताइए कि अमीरुल मोमिनीन अगर उस मौके पर ये जुमला बोलते तो आज हम कहां खड़े होते? आज हमारे पास कोई आर्गुमेंट मौजूद ना होता। अमीरुल मोमिनीन ने क्या जवाब दिया, यानी वाकयान कहना चाहिए कि अमीरुल मोमिनीन आप पर हम कुर्बान। मौलाए कायनात के सामने ऑफर किया है, बहुत अट्रैक्टिव ऑफर है, दुनियादारी के अतबार से, मेटेरियलिस्टिक अप्रोच के अतबार से बहुत ही जबरदस्त चाम है इसके अंदर। कहली इन तीन बातों का इकरार कर लीजिए कि ये जो हुकूमत अभी आपकी शुरू भी नहीं हुई है, मगर ये मुल्क इक्तदार हुकूमत जो आप करेंगे, नंबर एक कुरान के मुताबिक, नंबर दो पैगंबर अकरम की सुन्नत के मुताबिक, और नंबर तीन बुज़ुर्गों की सीरत के मुताबिक। इन बुज़ुर्गों की सीरत को भी आप लेजिटिमेसी प्रोवाइड कीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने जवाब क्या दिया? जो मौला का जो जवाब है ना, उसका खुलासा ये है कि कुरान वो तो मेरे घर की किताब है, कुरान मेरे घर की किताब है, सुन्नत रसूल वो उसी की तशरीह है, वो भी मेरे घर की है, कुरान मेरे घर की किताब है, सुन्नत रसूल वो भी मेरे घर की है। ये बताओ कि ये बुजुर्गों की सीरत अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो अलग से क्यों बयान कर रहे हो? अगर ये बुजुर्गों की सीरत कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो फिर अलग से क्यों बयान कर रहे हो? अलग से बयान करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ये सीरत कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो अली सब कुछ कर सकता है, कुरान और सुन्नत की मुखालफत नहीं कर सकता। आपने गौर फरमाया बरादरान अज़ीज़, एक है मुल्क और इक्तदार को ऑब्जेक्टिव बनाना, टारगेट बनाना, और एक है कि नहीं ये टारगेट नहीं। अगर उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ये कह दें बरादरान अज़ीज़ वाकई ना विजुअलाइज करें कि इस वक्त हम कहां खड़े होते हैं, हमारे पास कहने के लिए कुछ बाकी नहीं होता। ये खुद मौलाए कायनात ने कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं कुरान पर भी अमल करूंगा, सुन्नत पर भी अमल करूंगा, इन बुजुर्गों की सीरत पर भी अमल करूंगा। अमीरुल मोमिनीन निगेट करते हैं, डिसओन करते हैं, उसको कोई लेजिटिमेसी प्रोवाइड नहीं करते, कोई ऐसी गारंटी नहीं देते कि अब तक जो हुआ है मैं इन तमाम तर चीज़ों को एंडोर्स करने के लिए तैयार हूँ, सेकंड करने के लिए तैयार हूँ, नॉट एट ऑल, नहीं होगा। क्या फिर आपको इक्तदार भी नहीं मिलेगा? क्या नहीं चाहिए? तुम्हारा दिया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तुम्हारा दिया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप जरा गौर फरमाइए, उसके बाद होता क्या? यही ऑफर तीसरे खलीफा के सामने रखी जाती है। क्या आप ये कहिए कि मैं इन तीन चीज़ों पर अमल करूँगा, कुरान पर का बिल्कुल करूंगा, पैगंबर अकरम की सुन्नत का बिल्कुल करूंगा, का बुजुर्गों की सीरत का बिल्कुल करूंगा, का इक्तदार आपका, तीनों में से किसी चीज पर अमल नहीं किया, का कहना ही तो था, बोलना ही तो था, यानी ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। खिलाफत मुलुकियत मौलाना मौदूदी की उठाकर देख लीजिए, वो अगर एग्जेम्प्ट भी करते हैं बड़ी मुश्किल से तो पहली दो खिलाफतों को एग्जेम्प्ट करते हैं, तीसरी खिलाफत के बारे में उनके बड़े रिजर्वेशन हैं, बहुत तनकीद की है उन्होंने, اور حق پر مبنی تنقید کی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس کے باوجود ظاہر ہے کہ جو ان کا ایک نظریہ ہے اس کے مطابق تو انہیں کچھ نہ کچھ دفاع کرنا تھا, لیکن آپ دیکھ ڈالیے کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات وہی تھی. ایون بہت ساری چیزیں وہ کہ جو ان کے بزرگوں کی تھی اس کی بھی انہوں نے مخالفت کر ڈالی, تو تینوں میں سے کسی چیز پر بھی عمل نہیں کیا. مگر یہ فرق ہے, جہاں اقتدار ہدف ہے, جہاں ملک ہدف ہے, جہاں وہ ٹارگٹ ہے, اپروچ بدل جائے گی. اور جہاں یہ ٹارگٹ نہیں ہے وہاں پر اپروچ بالکل مختلف ہوگی. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, امیر المومنین کو کیا جواب ملا؟ قرآن, سنت, بزرگوں کی سیرت. اب آپ ذرا دیکھیے کہ امام حسن مصطفیٰ نے جس صلح نامے پر دستخط کروائے اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ وہ حکومت جو چل رہی تھی, امام حسن کہہ رہے ہیں, بغاوت ہے نا اس کی طرف سے, شام میں ایک الگ حکومت قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ حکومت جو چل رہی تھی اسے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا مرکز کے سامنے, جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو. امیر المومنین کے زمانے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا, اور اب امام حسن مصطفیٰ جب اس کے سامنے صلح نامے کا ڈاکومنٹ پیش کرتے ہیں تو پہلی چیز کیا لکھی ہوئی اس کے اندر؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ امیر شام قرآن کے مطابق اور سنت رسول کے مطابق حکومت کرے گا. وہ کرے نہ کرے وہ بات کی بات ہے, مگر کرے گا. ڈاکومنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن اور سنت. بزرگوں کی سیرت کا کہیں تذکرہ ہے؟ بہت توجہ کیجئے, بزرگوں کی سیرت کا کہیں تذکرہ ہے؟ یعنی حسن مصطفیٰ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جو چیز امیر المومنین نہ منوا سکے وہ حسن مصطفیٰ نے منوا لی. قرآن پر عمل ہوگا اور سنت رسول پر عمل ہوگا, اور چارج شیٹ بھی ہے کہ اب تک جو تم کر رہے تھے نہ وہ قرآن کے مطابق تھا نہ وہ سنت رسول کے مطابق تھا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا. ایک طرف درود بھیجے گا محمد و آل محمد, آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, مامون رشید آٹھویں امام کو ملک دے رہا ہے, اقتدار دے رہا ہے. ہمارے بہت سے نوجوان دوست آ کر یہ سوال کرتے ہیں, انہیں ہضم نہیں ہو پاتا. تو مامون رشید جو تھا وہ تو ظاہر امام رضا علیہ السلام کو بہت آنر کرتا تھا, یہاں تک کہ اقتدار آفر کرنے کے لیے تیار ہو گیا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. وہ تو آٹھویں امام کو اقتدار آفر کرنے کے لیے تیار ہو گیا, تو وہ یقیناً آٹھویں امام کے لیے عقیدت کے جذبات رکھتا تھا. اللہ صلی اللہ محمد محمد محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیجے محمد و آل محمد. پھر ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور بھیج دیجیے درود. اتفاق ایسا ہے کہ ابھی آتے ہوئے عمران صاحب سے جب بات ہو رہی تھی تو میں نے مائک کی بہت تعریف کی, تو میری لگی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آٹھویں امام کے حوالے سے آپ دیکھیے, مامون رشید اقتدار آفر کر رہا ہے. کون مامون رشید؟ کہ جس نے اپنے بھائی کو قتل کروایا ہے اسی اقتدار کے لیے. ہارون رشیدی کے دونوں بیٹے ہیں امین اور مامون. مامون نے امین کو قتل کروایا ہے اسی اقتدار کے لیے. ہارون رشید نے اپنی زندگی میں یہ اقتدار تقسیم کر دیا, ملک عربی علاقے امین کے حوالے, اجمی علاقے ایران ترکستان وغیرہ یہ سارے کے سارے مامون کے حوالے. یہ اجمی ماں سے اجمی علاقے اس کے حوالے, وہ عربی ماں سے عربی علاقے اس کے حوالے. یاد رکھیے گا برادران عزیز, یہ بھی عبرت کے نشانات ہیں. وہ ہارون رشید جس نے سادات کو قتل کروایا, منصور دوانگی کی لیگیسی تھی نا یہ بھی, کہ شہر بغداد تعمیر ہوا تو اس کی دیوار میں گارے کی جگہ پر गारे में पानी की जगह पर खून सादात को शामिल किया गया। उसी के लेगेसी हारून रशीद के पास आई और हारून रशीद मामून रशीद ने एक दफा जुमला कहा था कि ये जो आले मोहम्मद की तरफ मेरा मैलान है, इल्म दोस्त तो था, वो इल्म दोस्त होने से इनकार नहीं है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि मुल्क और इक्तदार वाकई जेन्युइनली हवाले करने के लिए वो तैयार हो गया। मामून रशीद कहता है कि ये जो मेरा आले मोहम्मद की तरफ मैलान कल्बी है वो किस वजह से, ये किसने मुझे सिखाया? ये हारून रशीद ने सिखाया, मेरे बाप ने मुझे सिखाया। एक दफ़ा मैंने सातवें इमाम की, यानी उसने सातवें इमाम तो नहीं कहा, उसने कहा मैंने मूसी काजिम की बड़ी ताज़ीम देखी, बड़ी तकरीम देखी, मेरे बाबा बहुत ज़्यादा एहतराम कर रहे थे, मगर जब वो गए तो मैंने नहीं देखा कि जो वादे उन्होंने किए थे उनसे उन वादों को उसने पूरा किया। तो मैंने सवाल किया, बाबा ये थे कौन जिसकी इतनी इज्जत इतनी ताज़ीम की जा रही थी? तो मेरे बाप ने यह कहा कि हक तो इन्हीं का है, वल्फज़लु मा शहदत बिल अदा, फजीलत तो वही है कि जिसका दुश्मन भी एतराफ़ करे, निजी नशस्तों में कम से कम करे। क्या मेरे बाप ने यह कहा कि हक तो इन्हीं का है? तो मामून रशीद ने कहा कि फिर बाबा उसको दे क्यों नहीं देते हक जब उसका है? ये तो लॉजिकल है ना कि जब हक उसका है तो दे दीजिए। तो मेरे बाप ने यह कहा कि याद रखना ये तो फिर गैर है, तू तो मेरा सगा बेटा है ना, मेरे मुल्क और मेरे इख्तदार की राह में अगर तू कभी आया तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अल मुल्क अकीमुन, मुल्क बांझ होता है, इख्तदार बांझ है, मुल्क और इख्तदार की फिर कोई औलाद नहीं। मेटेरियलिस्टिक अप्रोच तो यही है, दुनियादारी का अंदाज तो यही है। मामून रशीद कहता है कि मुझे मेरे बाप ने यह सिखाया, मुझे मेरे बाप ने यह बताया कि आले मोहम्मद साहिब फजीलत हैं, आले मोहम्मद साहिब कमालात हैं, उनके साहिब फजीलत होने में कोई शुबा नहीं, साहिब कमालात होने में कोई शुबा नहीं, क्या इसी वजह से मेरा दिल भी उनकी तरफ माइल ज़रूर है? तो फिर वो इख्तदार दे देगा, वो मुल्क दे देगा, वही मुल्क जिसके बारे में उसका बाप ये कह चुका है कि अल मुल्क अकीम हो, कि मुल्क की कोई औलाद नहीं है, वही मुल्क जिसके लिए खुद मामून ने अपने भाई को कत्ल करवाया, टू द एक्सटेंट के जहाँ पर सर काटा गया, यानी अमीन जो कैद में था उसे किसी ने कहा कि बेफिक्र रहे, बहरहाल कुछ भी है तेरा भाई है तुझे माफ़ कर देगा, वही जुमला उसने कहा जब उसे किसी ने कहा कि तेरा भाई है बिल आखिर तुझे माफ़ कर देगा, तो उसने कहा मुल्क अकीम, मुल्क और इक्तदार इसमें रिश्तेदारी कहाँ से आ गई? हम लड़ ही रहे थे ना भाई होने के बावजूद एक दूसरे से, ये मुझे नहीं बख्शेगा। और फिर हुआ ये, उसका सर काटा गया, और जब सर काटा गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, रखा गया उसको, और सारे मुसाहिबीन को ये हुक्म दिया गया कि सब यहाँ पर आएं और अमीन पर लानत करें, ये भाई है, भाई का सर काटा गया है और सर काटने के बाद उस पर लानत करवाई जा रही है। तब उसके दिल को सुकून हुआ, वो इख्तदार जिसको हासिल करने के लिए इतने जतन किए हैं आप तवक्को करते हैं कि ये इख्तदार ये आठवें इमाम को देने के लिए आए, अतः ऐसा नहीं, कतअन ऐसा नहीं है, पर्पज़ सिर्फ एक है कि किसी तरीके से आठवें इमाम को इस कैंप में शामिल किया जाए और शो ये किया जाए कि अब तो ये भी हमारे साथ है। इत्तेफाक ऐसा है कि आयतुल्लाह जाफर मुर्तज़ा आमली जिनका भी इंतकाल हुआ उनकी बहुत उम्दा किताब है इस मौजू के ऊपर, अल हयातु सियासिया लिल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, जिनके लिए कल हमने फातिहा यहाँ पढ़वाया था, उस किताब का नाम ही है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सियासी ज़िंदगी वो हालात, उसका उर्दू तर्जुमा भी कम से कम एक बड़े हिस्से का उर्दू में हुआ है, अवेलेबल है, उसको पढ़ा जा सकता है। मगर याद रखिएगा बरादरान अजीज़, ये मुल्क और इक्तदार जब उसको फोकस करके ऑब्जेक्टिव बनाया जाए तो फिर ना कोई रिश्तेदारी है ना कोई ताल्लुक कुछ भी नहीं, जहाँ वो हदफ ना हो मामला अलग है। जब आठवें इमाम के सामने ये ऑफ़र रखी गई थी तो आठवें इमाम ने क्या जवाब दिया था, ये है शिया अकीदा। आठवें इमाम के सामने जो उसने ऑफ़र रखी थी वो क्या थी, क्या फर्जंद रसूल हम ये आपको दे रहे हैं, तो आठवें इमाम ने उसके जवाब में क्या कहा था, आठवें इमाम ने फरमाया था कि अगर अल्लाह ने तुझे ये हक दिया है तो तेरे पास ये हक नहीं है कि किसी और को दे सके, अगर ये मनसब खुदा ने तुझे दिया है तो तेरे पास ये हक कहाँ है कि तू किसी और को दे सके। यानी ऐसा हो सकता है कि पैगम्बर अकरम को खुदा नबी बनाए और पैगम्बर अकरम नबूवत किसी और के हवाले कर दे, ये ओहदा जो मिन जाने बिल्ला दिया गया है तो साहिब मनसब के पास भी ये हक नहीं है कि वो किसी और को दे सके। तो आठवें इमाम फरमाते हैं अगर खुदा ने तुझे बनाया है तो तेरे पास ये हक नहीं है कि तू किसी और को बना सके, और अगर तूने खुद छीना है तो छीनने के बाद ये तेरा कब था कि तू किसी और को दे सके। अगर तूने इसे गस्प किया है तो गस्प करने के बाद तेरा हक ही कहाँ है कि तू किसी और को देने की बात करता है। यानी ये बुनियादी तौर पर जो शिया अकीदा है वो यही है कि इमामत मिन जानिबिल्लाह है। जब वो मिन जानिबिल्लाह है तो परवरदिगार का हक है कि वो किसको मुकर्रर करे, किसको मंसूब करे। ये परवरदिगार आलम का राइट है, ये परवरदिगार आलम का हक है। बस बिरादरान अजीज, इस बात को एक्सप्लेन करने में, एलोबरेट करने में आले मोहम्मद को कुर्बानियां बहुत देनी पड़ी, बहुत ज्यादा कुर्बानियां आले मोहम्मद को देनी पड़ी। यानी मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से ये समझता हूं, और आप किताबों में देखेंगे तो उलमा के ताईदी बयानात भी आपको मिलेंगे कि कर्बला की इस पूरी जंग के जरिए से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस बात को एलोबरेट किया है कि रिसालत और है, इमामत और है, मुलुकियत और है। कोई शक नहीं है कि मुल्क और इक्तदार आले मोहम्मद का हक है, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आले मोहम्मद को यह हक ना भी मिले तो उससे उनकी इमामत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रिसालत पैगंबर अकरम की है, जब पैगंबर अकरम की रिसालत है तो मुल्क और इक्तदार उनका हक है। अगर 13 बरस तक पैगंबर अकरम के पास मुल्क और इक्तदार जाहिरी तौर पर नहीं है तो उससे क्या पैगंबर अकरम की रिसालत पर कोई फर्क पड़ता है? ये ओहदे लोगों के मानने के मोहताज नहीं होते। खुदा खुदा है, लोग माने तब भी खुदा है और लोग ना माने तब भी खुदा है। अगर सारी कायनात मिलकर खुदा के सामने सजदा रेज हो जाए तो परवरदिगार की तौहीद में कोई इजाफा नहीं होता, और सारी दुनिया अगर मिलकर इनकार कर दे तो परवरदिगार आलम की तौहीद में कोई कमी वाकई नहीं होती। ये लोगों के सजदे रेफरेंडम के वोट नहीं है कि जिसके बाद खुदा खुदा बनेगा। माज़ल्ला, अगर ये किसी का अकीदा है तो वो इस्लाह करे। न सजदे रेफरेंडम के वोट हैं, न मोहम्मद और रसूलुल्लाह का कलमा रिसालत का कोई वोट है। अगर लोग कलमा ना पढ़े रिसालत का तो पैगंबर अकरम की रिसालत को क्या फर्क पड़ता है? हजरत अल्लामा ज़ीशान अदर जवादी अलल्लाहु मकामहू ने किसी मौके पर यह इरशाद फरमाया था कि खुदा खुदा है, तुम मानो तो वो खुदा है, तुम ना मानो तब वो खुदा है। सब इनकार कर दें तो खुदा की तौहीद पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मान लें तो खुदा की तौहीद में कोई इजाफा नहीं होता। तुम मानो ताकि तुम मुवाहिद कहलाओ, नहीं मानोगे तो तुम मुशरिक रह जाओगे। वो तो एक था, एक है, एक रहेगा। उसी तरीके से रसूल है, उसकी रिसालत को तुम मानो, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम काफिर रह जाओगे। तुम मान लोगे तुम मुसलमान हो जाओगे। वो तो रहमतुल आलमीन थे, हैं और रहेंगे। का बिल्कुल इसी तरीके से अली को तुम वली मानो, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम मुनाफिक रह जाओगे। वो कुल ईमान थे, कुल ईमान है, कुल ईमान रहेंगे। उनका मुल्क, उनका इक्तदार वो तुम्हारे मानने का मोहताज नहीं है। तुम अगर ना भी मानो तो हक उसी का है। अगर तुम मान लोगे तो तुम अपनी शराफत का सबूत दोगे कि हाँ, जो मनसूबा परवरदिगार है हम भी उसकी तकमील के लिए बेचैन है, मुस्तरिब है, हम भी चाहते हैं कि उस हवाले से अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डालें। लेकिन अगर तुम ना भी डालो तो जो परवरदिगार का मनसूबा है वो तो बिलाखिर तकमील के मराहिल तक पहुँचेगा। अगर इंसान सारे के सारे दस्तबरदार हो जाएं, जो आले मोहम्मद की अजमत है उसमें कोई कमी वाकई नहीं होती। ये दुनियादारी की अप्रोच है, ये मेटेरियलिस्टिक अप्रोच है कि जहाँ पर यह समझ लिया जाए कि अगर किसी को असीर कर दिया गया तो वो खुदा की नज़र में भी जलील हो गया, माज़अल्लाह। ये दुनियावी तजलील हो सकती है मगर इसका हकीकी तज़ीम और हकीकी इज़्ज़त से कोई ताल्लुक नहीं। आप ज़रा गौर फरमाइए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या जुमला कह रहे थे, जो एक शआर की हैसियत इख्तियार कर गया और बिल्कुल दुरुस्त तौर पर इख्तियार कर गया। ان الدائی ابن الدائی قد رکضنی بین اسنتین بین السلہ والذلہ وحیحات من نزلہ. کیا جملے کہ اس بد نصب نے مجھے ان دو چیزوں کا اختیار دیا ہے کہ یا میں ذلت کے ساتھ بیعت کر لوں, یا میں ذلت کے ساتھ بیعت کر لوں اور بس اپنی سانسیں پوری کروں, اسی تذلیل کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار دوں, اور یا پھر میں شہادت کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤں. قدر قدر نہیں بے نسنت ہے. اور پھر امام کہتے ہیں ہائی ہاتھ میں نزلنا, کہ ذلت ہم سے دور ہے. اگر ہم یہ کہیں مولا ذلت آپ سے دور ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا سر کاٹ لیا جائے گا, آپ کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے, یہ تذلیل نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تذلیل ہے. دنیاوی اعتبار سے دیکھیں اگر مال لوٹ لیا گیا تو تذلیل ہے. دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ آپ کے گھر کی ناموس کو بے مکنہ و چادر کے درباروں اور بازاروں کے اندر لے جایا گیا تو یہ کیا ہے؟ اور حسین ابن علی پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں ہائے ہاتھ میں نزلنا, کہ ہم سے ذلت دور ہے. کہ تم نے کب جانا کہ عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اے پروردگار, ملک اور اقتدار تیرا ہے, تو جس کو چاہے عطا کرے, لوگ مانے یا نہ مانے. تو نے جس کو صاحب ملک و مملکت بنا دیا, تو نے جس کو صاحب ملکیت بنا دیا, تو نے جس کو ملک عطا کر دیا. اے پروردگار, لوگ اپنے زوم میں اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے چھین لیا تو چھین لیا, تو نے نہیں چھینا, تو نے ان کو عطا کیا, تو نے انہی کو صاحب منصب بنایا. وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. اے پروردگار, تو جس کو عزت دینا چاہے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ اس کا گھر لوٹا جا سکتا ہے, اس کے بچے قتل کیے جا سکتے ہیں, مگر اسے ذلیل نہیں کیا جا سکتا. وہ سر جو کٹنے کے بعد بھی نوکے نیزہ پر بلند, وہ جو شہادت کے بعد تلاوت قرآن کر کے دکھائے, یہ جناب زینب کا استدلال ہے جو دربار یزید میں بی بی نے کیا. جناب زینب فرماتے ہیں کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, وہ آیت کدھر جائے گی؟ عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے؟ اگر جناب زینب کے اس خطبے کو آپ پڑھیں, برادران عزیز, میں نے کئی مجلسوں کے اندر یہ شرف حاصل کیا ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ عیناً اس خطبے کے الفاظ کو سامعین تک منتقل کیا جائے, یقین جانیے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اگر اس خطبے کا ایک عنوان تجویز کرنے کا مجھے حق دیا جائے, ایک عنوان تو ہے خطبہ جناب زینب, لیکن اگر آپ مجھے حق دیں کہ میں اس خطبے کا کوئی عنوان تجویز کروں کہ اس متن کو دیکھتے ہوئے کیا عنوان مناسب ہے, تو میں اس کے لیے عنوان تجویز کروں گا عزت و ذلت کا معیار. جناب زینب نے جس طریقے سے وہاں پر عزت اور ذلت کے معیار کو سمجھایا کہ اگر یہی معیار ہے کہ اگر سر کٹ گیا تو وہ ذلیل ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک, تو پھر یہ آیت کہاں جائے گی؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, کہ گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہے. تمہارے ذہن و دل و دماغ میں کہیں یہ خیال بھی نہ آنے پائے, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون, وہ اپنے رب کے پاس مسلسل رزق پا رہے ہیں. جناب زینب یہی سمجھانا چاہ رہی ہیں, اے دنیا داروں, تمہارا معیار یہ ہے کہ سر کٹ گیا تو وہ ذلیل ہو گیا, خدا کا معیار عزت یہ ہے کہ اگر سر کٹ بھی گیا تو حیات کی سند ہم دے رہے ہیں, سند حیات ہم دے رہے ہیں, محیی ہم ہیں, ممیت ہم ہیں, زندہ کرنے والے ہم ہیں, موت دینے والے ہم ہیں, ہمیں حق ہے کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ زندہ ہے یا مردہ. ہم تمہیں بتلا رہے ہیں کہ سر کٹنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے, بلا یا ان عند ربہم یرزقون, وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سے مسلسل رزق پا رہے ہیں. یہ ہماری طرف سے سند حیات بھی ہے اور سند عزت بھی ہے. ہم سرٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ صاحبان عزت ہیں. تم صرف کٹا ہوا سر دیکھ سکتے ہو, تم ان کی زندگی کو نہیں دیکھ پا رہے, تمہیں شعور نہیں ہے. لیکن برادران عزیز, بے شک جو قربانی دی گئی ہے وہ بہت بڑی قربانی دی گئی. آج کی حد تک میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں جناب سہیل ابن سعد الساعدی کا مشاہدہ. یہ کون ہے؟ صحابی رسول. بعض علماء کے مطابق یہ آخری صحابی ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہوئے. ان کا خود کا ایک جملہ ہے کہ اگر میں اس دنیا میں نہ رہا تو اس کے بعد تم کسی سے براہ راست نہ سن سکو کہ قال رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. یہ سہیل ابن سعادت ساعدی ان صحابہ کرام میں شامل ہیں کہ جن کو ریفر کیا ہے امام حسین نے عاشور کے دن دشمنوں کو مخاطب کر کے. امام نے کہا تھا کہ میں اور میرا بھائی وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اگرچہ میرا کہنا کافی ہے, میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا, لیکن پھر بھی اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو آج بھی اس دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا. جاؤ جا کر پوچھو جابر ابن عبداللہ انصاری سے, جاؤ جا کر پوچھو زید بن ارقم سے, جاؤ جا کر پوچھو سہیل ابن سعد الساعدی سے, جاؤ جا کر پوچھو انس ابن مالک سے. یہ سب صحابہ کرام ہیں اور انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. عاشور کے دن کا خطبہ حسین ابن علی کا, جن کا نام لیا ہے ان میں سہیل ابن سعد الساعدی شامل ہیں, بلکہ جتنے نام امام نے لیے ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی کردار ہمیں بعد میں نظر آتا ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا کے پہلے ظاہر, کربلا کے پہلے ظاہر, اربعین کے دن جو وہاں پر موجود تھے زیارت کے لیے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دربار ابن زیاد میں جب یہ دیکھا کہ ابن زیاد چھڑی سے امام کے لبوں کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے تو جناب زید بن ارقم کھڑے ہو گئے, اے ابن زیاد خدا کے لیے اپنی چھڑی کو ہٹا لے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لبوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے پیغمبر اکرم چھپ چھپ کر انہیں بوسہ دیا کرتے ہیں. عزیزان میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, مجھے صرف اتنا بتائیے حجر اسود اتنا محترم کیوں ہو گیا؟ ہم حج پر جاتے ہیں عمرے پر جاتے ہیں اور بے شک حجر اسود محترم ہے, مجھے اس کی حرمت سے انکار نہیں ہے, مگر میں سوال کر رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ حجر اسود کو کہا جاتا ہے بوسہ گاہ رسول, کہ پیغمبر اکرم نے اسے بوسہ دیا تھا. کتنی مرتبہ دیا تھا؟ چند مرتبہ ہی تو دیا تھا. آج پوری دنیا لائن لگا کر کھڑی ہوتی ہے کہ ہمیں موقع مل جائے کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے اسے بوسہ دیا تھا. ارے جس پتھر کو چند مرتبہ رسول اللہ بوسہ دیں وہ اتنا محترم ہے, اور وہ حسین کے جسے پیغمبر اکرم مسلسل پیار کرتے تھے, کبھی رخساروں پر بوسہ دیتے ہیں, کبھی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں, کبھی گلے پر بوسہ دیتے ہیں. اور عجیب ہے کہ پیغمبر اکرم بوسہ بھی دیتے جا رہے ہیں اور آنسو بہاتے جا رہے ہیں. جب کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول ایک طرف آپ بچے کو پیار کرتے ہیں دوسری طرف آنسو بہاتے ہیں, تو پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا اقبل مواضع السیوف و ابکی, میں بوسہ دے رہا ہوں محبت کی وجہ سے مگر میرے پیش نظر وہ سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر دشمنوں کی تلواروں سے ضرب لگنے والی ہے, میں ان زخموں کو یاد کر کے اپنے حسین کو بوسہ دے رہا ہوں. آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز, وہ زید بن ارقم برداشت نہیں کر پائے. یہی منظر ابو برزہ اسلمی ایک اور صحابی رسول کہ جنہوں نے دربار یزید کے اندر یہ منظر دیکھا, یزید چھڑی سے گستاخی کر رہا ہے, اس نے بھی کھڑے ہو کر یہی جملے کہے, اے یزید خدا کے لیے چھڑی کو ہٹا لے, جن دندان کے ساتھ جن لبوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیغمبر اکرم اسے بوسہ دے رہے تھے. آپ نے غور فرمایا, سہیل ابن سعد الساعدی دمشق کسی کام سے آئے ہوئے تھے, بیت المقدس سے دمشق کا فاصلہ ہی کتنا تھا, بیت المقدس سے دمشق آئے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ ہر طرف عید کی تیاری, پورے شہر کو سجایا جا رہا ہے, آئینہ بندی کی جا رہی ہے, سیلیبریشن کا ماحول ہے, جشن کا ماحول ہے. تو میں نے کسی سے سوال کیا, کہہ رہے یہ کون سی عید ہے جو اہل دمشق منا رہے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہ شخص سہیل کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ ہیں کون؟ کہا میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں, میرا نام سہیل ابن سعد الساعدی ہے. آپ کے ذہن میں میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ افراد تھے جو دمشق میں آنسو بہا رہے تھے, زیادہ تر لوگ تو جشن منا رہے, کچھ تھے کہ جو آنسو بہا رہے تھے. اس میں جناب ابو ذر کی محنت, امام حسن کا کنٹریبیوشن, یہ شخص انہی میں سے تھا. اس نے دائیں بائیں دیکھا, چھپتے چھپاتے بچتے بچاتے ایک کونے میں لے جا کر سہیل ابن سعد الساعدی کو کہا, اے صحابی رسول آپ کو حیرت نہیں ہوتی ہے کہ زمین پھٹ کیوں نہیں رہی؟ اے صحابی رسول آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ آسمان گرتا کیوں نہیں ہے؟ کہا اے بندہ خدا مجھے بتا تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے, یہ کون سا جشن ہے جو یہاں پر منایا جا رہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ جشن اس بات کا منایا جا رہا ہے کہ فرزند علی و زہرا حسین کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ دیا گیا, نوک نیدا پر بلند کیا گیا اور اسے لایا جا رہا ہے. سہیل ابن سعد الساعدی کہتے ہیں میں نے اپنا سر پیٹ لیا, میں نے کہا ہائے افسوس, वही हुसैन जो मुस्तफ़ा का नवासा है, वही जैसे मिन्नियत की सनद अता हुई है, उसी का सर काट लिया गया और ये कौम जश्न मना रही है। वो शख्स कहता है कि ऐ सहाबी रसूल सिर्फ इतना नहीं है, सिर्फ सरों को नहीं लाया जा रहा, सिर्फ शोहदा के सरों को दयार ब दयार नहीं बनाया जा रहा, का फिर और क्या हो रहा है, का बीबियों को भी लाया जा रहा है। का ये कौम इतनी गिर सकती है, बीबियों को लाया जा रहा है। वो कहता है कि ऐ सहाबी रसूल सिर्फ इतना नहीं है, बीबियों को बेमखना और चादर के लाया जा रहा है। और अब सुहेल कहते हैं कि कोई मुझे बताए कि वो सर कहां से आने वाले हैं। इशारा किया गया बाबू साद के जहां पर 3 दिन तक इस काफिले को ठहराया गया था, ये लुटा हुआ काफिला आले मोहम्मद का 3 दिन तक ठहराया गया कि यहीं पर इंतजार करो, अभी शहर सजाया जा रहा है, पूरी तरीके से सजावट मुकम्मल नहीं हुई है। 3 दिन तक बीबियां वहां पर इंतजार करती रही, सैयद सज्जाद हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ वहीं पर मौजूद रहे। और अब आहिस्ता आहिस्ता यह काफिला शहर दमिश्क में दाखिल हुआ। सुहेल कहते हैं कि मैंने देखा कि पहले नेज़े आए, नेज़ों की अनियों पर मैंने सरों को देखा, हुसैन के सर को पहचानने में मुझे कोई जहमत नहीं हुई, मैंने पहचान लिया ये फर्जंद रसूल का सर है। मैंने दीगर शहदा के सरों को देखा और फिर मैंने देखा कि उसके पीछे पीछे कुछ असीर लाए जा रहे हैं, गिरफ्तारान बला। उन असीरों को जब मैंने देखा तो मुझे वो जवान भी नज़र आया कि जिसकी हाथों में हथकड़ियाँ थी। बीबियों की तरफ तो मैं देख भी नहीं सका, मैंने अपनी नज़रों को नीचे कर लिया। मैं आया उस असीर के पास, आकर मैंने ये कहा, ऐ फर्जंद रसूल, मैं समझ सकता हूँ कि आप अली इब्न हुसैन हैं, आप ज़ैनुल आबिदीन हैं, मेरा सलाम कबूल कीजिए, मैं आपके जद का सहाबी हूँ। सैयद सज्जाद ने अपना चेहरा उठाया और कहते हैं कि आपका शुक्रिया कि आपने सलाम किया, वरना यहाँ पर हमें कोई सलाम के काबिल भी नहीं समझा। सुहेल इब्न साद असाइदी कहते हैं कि फर्जंद रसूल, मैं तो इन बीवियों की तरफ देख भी नहीं सकता, अगर हो सके तो मेरा सलाम इन बीवियों तक भी पहुंचा दीजिए। और साथ ही साथ कहिएगा कि मैं आपके जद का सहाबी हूं, अगर कोई खिदमत मेरे लायक है तो मुझे बताइए ताकि मैं उस खिदमत को अंजाम दे सकूं। सैयद सज्जाद ने जनाब ज़ैनब को मुखातब किया और फरमाने लगे, पुपी अम्मा, ये हमारे जद के सहाबी हैं सुहेल इब्न साद असाइदी, वो आपको सलाम कह रहे हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा कि हाँ बेटा, हमारे जद के सहाबी को भी हमारा सलाम कहो। कब वो भी अम्मा, वो कह रहे हैं कोई खिदमत अगर उनके लायक हो तो बताइए। जनाब ज़ैनब कहती है कि ऐ बेटा, हमारे जद के सहाबी से कहो अगर कर सकें तो सिर्फ एक काम करें, अगर हो सके तो बस एक काम करें। सुहेल कहते हैं हाँ हाँ, फर्जंद रसूल पूछिए मैं क्या खिदमत अंजाम दे सकता हूँ। अब जनाब ज़ैनब कहती हैं कि हमारे जद के सहाबी अगर हो सके तो इन नेज़ा बरदारों को कुछ पैसे देकर आमादा करें कि इन नेज़ों को थोड़ा आगे ले जाए। क्या उससे होगा क्या? बस होगा ये कि ये लोग तमाशा देखना चाहते हैं तो इन सरों का तमाशा देके हमारा तमाशा ना देखें। इनकी नज़रें जब हम पर पड़ती हैं, हमारे लिए अजीब कैफियत पैदा होती है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तहम्मुल नहीं कर पाते। उस मौके पर सुहेल इब्न साद असाइदी ने काम किया, अपनी जेब में जितने पैसे थे वो निकाल कर दिए नेज़ा बरदारों को और ये कहा कि थोड़ा आगे चले जाओ। कुछ देर के लिए वो नेज़ा बरदार आगे चले गए, मगर अजीज़ों फिर उसके बाद वही कैफियत लौट आई जो तमाशा देखने वाले बीबियों का तमाशा देख रहे। अब उसके बाद जब दरबार नज़र आया, अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मकामहू फरमाया करते थे कि सैयद सज्जाद रिवायत करते हैं, हम वैसे ही रस्सियों में जकड़े हुए थे, जब दरबार करीब आया तो और रस्सियां मंगाई गई और हमें वैसे झकड़ा गया जिस तरह से जानवरों को बांधा जाता है। अल्लाह अकबर, हमें वैसे झकड़ा गया जिस तरह से जानवरों को बांधा जाता है। कैफियत ये थी कि अगर एक बीबी बैठ जाए तो पूरे काफिले को रुकना पड़ता था, कोई आगे नहीं बढ़ सकता था, झकड़े हुए थे। दरबार तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजे थे और हर दरवाजे के दरमियान 500 सिपाही तलवारें लेकर खड़े थे, 2 रोया कतार बनाकर, रोकतारी करने के लिए, शौकत को इजहार करने के लिए। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के दरमियान 500 सिपाही तलवार लेकर खड़े थे और हम सब के सब वहां से गुजर रहे थे। बीबियां सहमी हुई थी, मगर हौसला कौन दे रहा था? काली की बड़ी बेटी वहां सबको हौसला दे रही है, लैला परेशान मत हो, मैं साथ चल रही हूँ। ऐ उम्मे कुलसुम परेशान मत हो, ज़ैनब तुम्हारे साथ है। ऐ रबाब, दिल में कोई खतरा महसूस मत करो, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। यहाँ तक कि जब 7 दरवाजे मुकम्मल हो गए और दरवाजा नजर आया तो अब अचानक खुद जनाब ज़ैनब बैठ गए, कमर को थाम कर कुछ देर के लिए जनाब ज़ैनब बैठ गए। سید سجاد کہتے ہیں میں ہتھکڑیوں کو سنبھالتے ہوئے اپنی پھوپھی کے پاس آیا اور میں نے کہا پھوپھی اماں کے دربار میں نہ چلیے گا, تو جناب زینب نے کہا کہ نہیں بیٹا چلیں گے دربار میں چلیں گے, مگر مجھے کچھ یاد آ گیا جس کی وجہ سے میں یہاں پر بیٹھ گئی. اب سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں کیا یاد آ گیا, کہ بیٹا تمہیں نہیں معلوم مگر 21 رمضان تھی, بابا اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے اور بابا نے مجھ سے کہا کہ زینب ذرا میرے قریب آنا, میں بابا کے قریب آئی, بابا نے کہا کہ اپنے کانوں کو ذرا میرے لبوں سے قریب کرو, میں نے کان بابا کے لبوں سے قریب کیے اور اب بابا نے آہستہ سے کہا زینب ظالم کے دربار میں جانا لازم ہے, دربار شام میں جانا لازم ہے. جب بابا نے یہ کہا تو میں نے کہا بابا وہاں تو نامحرموں کا مجمع ہوگا نا, وہاں زینب کیسے جائے گی؟ اس موقع پر مجھے بابا نے کہا زینب پریشان مت ہونا, میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اے بیٹا سید سجاد مجھے انتظار صرف اس بات کا ہے کہ بابا آ جائیں تو چلے. ایک دفعہ نجف کا رک کر کے کہا بابا آپ کی بیٹی آپ کی منتظر ہے, اور کچھ دیر کے بعد زینب کھڑی ہوئی, کہا بیٹا چلو جس کا انتظار تھا وہ آ گئے, بابا آ گئے. اب دربار کا سامنا کرنا آسان ہے, ظالم کا سامنا کرنا. اپنی بارگاہ میں قبول کر, اے پروردگار ہمارے آنسو کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما, اے پروردگار بانیان مجلس حاضرین مجلس کی دعاؤں کو مستجاب فرما, اے پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما, خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو بے روزگار ہیں ان عزت کی روزی عطا فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما, جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما, جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما. اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جن گھروں میں ناچاکی ہے ناراضی ہے, علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ, ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل کر, صاحبان ایمان کو ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں دکھ درد میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرمایا. مالی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے کی غلطیوں سے کوتاہیوں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرمائے, وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے, تمام علماء کرام مراجع زام مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے, اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرمائے, حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. Yeah.